ओम शांति। गुड मॉर्निंग। उषा दीदी को कौन नहीं जानता हा? सभी जानते हैं, क्योंकि दीदी का नाम ही क्या है, उषक काल। सुना है ना, काल के साथ दीदी का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि न जाने कितनों के दिन जीवन में दीदी ने उषा किरण को, प्रकाश को, रोशनी को प्रज्वलित किया है। तो ऐसी महान विभूति हमारे बीच में है। शिविर कराने वाले शिरमौर हो, ब्राह्मणों के ज्ञान की गुह्यता के राज हो आप, धर्म के लिए ध्वजा हो, और ऐसे हमने जो पहचाना था शुरुआत में, SML की लीडर हो। दीदी का जन्म विदेश में रहा, विदेश की धरनी पे जन्म और कर्म का स्थान भारत देश रहा। भारत के कोने कोने में जाकर के दीदी ने बाप को प्रत्यक्ष करने का विशेष कार्य किया। शुरुआत में हम दीदी को SML की दीदी, SML की उषा दीदी इस रूप में जानते थे, लेकिन दीदी के जीवन के एक ऐसा परिवर्तन हमने अपनी आंखों से देखा। जब भी बाबा गीता ज्ञान दाता प्रत्यक्ष करने की बात आती है, दीदी ने इतनी विद्वत्ता को धारण किया। कुंभ मेले में भी हमारी सेवाएं थी और दीदी का भी आगमन था, तो दीदी ने अपने मुखारविंद से जो वचन निकाले, सारे उस विद्वत मंडली के बीच में ब्रह्मा कुमारी के ध्वजा को इन्होंने लहराया। तो ऐसी विद्वत्ता की विदुषी, रामायण की बातों को ले लो, महाभारत की बातों को ले लो, आप कोई भी, चाहे अयोध्या की धरनी पर उन महान विभूतियों के, वहां महामंडलेश्वरों के बीच में, धर्माचार्य के बीच में बड़े सुंदर और सरल तरीके से, बड़ी नम्रता के साथ सत्यता को स्पष्ट करने की सबसे बड़ी कला है। देखो, उनके बीच में बैठ करके, गंगा के तट पर बैठकर गंगापति पावनी नहीं है कहना, ये साधारण बात नहीं है, लेकिन इतनी ही नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ सत्यता को सिद्ध करना, ये महारत हासिल है। तो दीदी के जवान पे तो सरस्वती विराजमान है। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी उषा दीदी जी हम सबके बीच में है। हम सब आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करें। दीदी जी, आपको हम सबके बीच में पा करके, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, कौन सा, स्टॉप और स्टॉक। दादी जी का जब 100 इयर्स की सेंचुरी मनाई जा रही थी, एक पत्रकार ने दादी को पूछा, दादी जी इतनी लंबी आयु का राज क्या है, आप एक लाइन में हमें जवाब दीजिएगा। दादी ने कहा, एक लाइन में, मैं एक शब्द में जवाब देती हूँ, मैं अपने लाइफ में फुल स्टॉप लगाना जानती हूँ। लंबी आयु का राज दादी ने हमें बताया था, फुल स्टॉप। आज कौन सा वो फुल स्टॉप है, दादियों ने कैसे लगाया, क्योंकि दीदी को ये सौभाग्य मिला दादियों के अंग संग रहने का, उनके जीवन को समीपता से देखकर ऊंची उड़ान भरते हुए दादियों को दीदी ने देखा। तो आज वो राज हम सबके सामने खोलेगी, फुल स्टॉप और फुल स्टॉप, इसके ऊपर दीदी जी आज हम सबको लाभान्वित करेंगे। आदरणीय श्रद्धेय उषा दीदी जी।
ओम शांति। राधा दीदी ने तो बड़ा लंबा महिमा वाला परिचय दे दिया। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है। वैसे देखा जाए तो दो विषय है, स्टॉप और स्टॉक, और दोनों के ऊपर एक एक क्लास हो सकता है। पौने घंटे के अंदर दोनों विषयों को किस तरह से न्याय दे सकेंगे, ये तो भी बाबा कराए ना। बाबा के बेहद घर में, मधुबन की इस पावन भूमि में आते ही स्टॉप तो हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। और उसमें भी विशेष भट्टी के लिए आते हैं तो सहजता से बाहर के जो भी संकल्प है उसको बिंदी लगाना आसान है, क्योंकि अगर बिंदी नहीं लगा सके तो यहाँ जो हम अपने अंदर भरना चाहते हैं, स्टॉक जमा करना चाहते हैं, वो जमा नहीं होता है। तो ये इस भूमि का कमाल है, या ये कहे कि बाबा की ये कर्म भूमि होने कारण बाबा का वरदान सहज अनुभव होता है। एक बार किसी भाई ने मुझे कहा, बहन जी बाबा कहते बिंदी लगाओ, है ना, कोई चीज थोड़ी उठाकर लगा दिया और संकल्प स्टॉप हो गए, ये तो सूक्ष्म चीज है ना, तो बिंदी लगाने का भाव क्या है, कैसे बिंदी लगाए। तो बाबा जब कहते हैं बिंदी लगाओ, भाव बाबा का ये है परिवर्तन, संकल्पों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जिस धारा में चल रहे हैं हमारे संकल्प, उससे परिवर्तन कर लो, और परिवर्तन करके क्या सोचना चाहिए, क्योंकि विचारों को स्टॉप तो नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो मन की एक नेचुरल ये क्रिया है, तो उस क्रिया को आप बंद कर दो, वो तो हठयोग हो जाएगा। हमें हठयोगी तो बनना नहीं है कि भाई विचार शून्य होकर के हम बैठ जाए, विचार शून्य भी नहीं होना है और स्टॉप भी करना है। कैसे करेंगे, तो इसीलिए कहा विचारों को एक दिशा दे देना, जो उसकी धारा चल रही है वहां से उसको एक और दिशा दे दो, जिसको कहा जाए सकारात्मक दिशा, पॉजिटिव दिशा दे दो, ताकि हमारी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका लीकेज ना हो। जो हमने जमा किया हुआ है उस जमा का लीकेज ना हो। अच्छा, तो कैसे दिशा देंगे, तो गीत में हमने सुना तीन बिंदी लगाओ, बाबा भी कहते बच्चे तीन बिंदी लगाओ, तो पहली बिंदी कहाँ लगानी चाहिए, पहली बिंदी मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ माना आत्म अभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति बनना, ये पहली बिंदी लगाना। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से इंटरैक्ट करते हैं और वहां उस आत्मा का कोई ऐसा संस्कार बीच में आ जाता है उस इंटरैक्शन में जो हमें अच्छा नहीं लगा उस वक्त, तो नेचुरल है कि विचार चलेगा। तो वहां आत्म अभिमानी स्थिति रखना, अर्थात या देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का मतलब है कि उस समय स्वयं को भी आत्म रूप में देखो, विजुअलाइज करो, और सामने वाले को भी आत्म स्वरूप में देखो। जब आत्म रूप में देखेंगे, बाबा ने अव्यक्त मुरली संडे की मुरली में कहा, ये अभ्यास हमें करना है, ये भी आत्मा है, उसकी भ्रुकुटी के बीच में देखना। बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर ये बात स्पष्ट की कि कई लोग कहते बाबा देह दिखाई देता है ना, तो देह दिखाई देता है, तो बाबा ने कहा भ्रुकुटी जब बात करते तो फेस को देख करके बात करते, तो उस समय भ्रुकुटी को देखो ना, दृष्टि खराब होती है आंखों के द्वारा जब देखते हैं तो ब्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखने का अभ्यास करो। ये है दिशा देना, अपने विचारों को दिशा देना कि जब हम उसको आत्म रूप में देखेंगे तो उसके वो संस्कार के बदले उसके अनादि संस्कार दिखाई देंगे। और अनादि संस्कार देखने का अभ्यास हमारा होगा तो उस वक्त उसकी कोई भी बात हमें बुरी नहीं लगेगी और ये उस आत्मा के प्रति रहम की भावना उत्पन्न होगी, है ना? पॉजिटिव दिशा देनी है ना, तो रहम की भावना उत्पन्न होगी कि ये आत्मा अपने संस्कारों के परवश है, क्यों न मैं उसको थोड़ी सकाश दे दूं ताकि वो उस संस्कार से सहज मुक्त हो सके। तो रहम की भावना आएगी तो व्यर्थ संकल्प, ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, यही तो व्यर्थ संकल्प है। तो ये व्यर्थ संकल्प क्रिएट होने के बजाय जब रहम की भावना उस आत्मा के प्रति होगी तो शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः आपकी प्रवाहित होने लगेगी। इसको कहते हैं फुल स्टॉप, कि जहां उस आत्मा के संस्कार हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प क्रिएट न करे परंतु उस आत्मा को देखते हुए हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना इमर्ज हो, तो ये समर्थ में परिवर्तन हो गया, ये फुल स्टॉप लग गया, उस व्यर्थ को हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अच्छा, मान लो कोई परिस्थिति आए, वहां कैसे फुल स्टॉप लगाए? प्रॉब्लम आया है आपके सामने और वो प्रॉब्लम आपके अंदर व्यर्थ क्रिएट कर रहा है, डर क्रिएट कर रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत मुश्किल है ना? ये डर कितने प्रकार का व्यर्थ क्रिएट कर लेता है, हमारी ऊर्जा को ड्रेन करना शुरू कर देता है। तो वहां स्टॉप कैसे लगाएंगे? वहां स्टॉप लगाना है कि ये देखो, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है। जब ये संकल्प आरंभ करेंगे कि इसके अंदर भी कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, तो जो व्यर्थ का फोर्स है वो समाप्त हो जाता है और कल्याण ढूंढने का आरंभ कर देते हैं तो हमारे संकल्पों को स्टॉप लग जाता है। कल्याण, ये दिशा दे दिया ना, कल्याण ढूंढना। दुनिया में भी कहा जाता है कि हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खान में मिलता है ना। अगर कोई व्यक्ति जाए कोयले की खान में और चारों ओर काला ही काला नजर आए तो दिल शिकस्त हो जाएगा, लेकिन उसकी नजरें ये होती है, उसको वो पहनाते हैं जिसमें लाइट होती है और वो लाइट पहन करके जाता है और उस काले में चमक को देखता है, हीरे को देखता है ना। और जब वो चमक दिखाई देती है तो कितनी खुशी होती है उसको। तो बाबा ने भी हमें लाइट लगा दी आत्मस्थिति की, और ये लाइट से भले कितना भी अकल्याण का स्वरूप क्यों न हो, बाहर का स्वरूप कितना भी अकल्याण का क्यों न हो, लेकिन उस अकल्याण के बीच में भी अगर हम आत्मस्थिति में स्थित होकर के अगर उस परिस्थिति को निहारेंगे, देखेंगे, डिटैच होकर के, साक्षी होकर के, तो हमें वो चमक महसूस होगी कि इस अकल्याण में भी क्या कल्याण समाया हुआ है। कल्याण को देखते ही क्या होगा? खुशी होगी, है ना? बाबा की एक मुरली अभी की साकार मुरली याद आ रही है, जिसमें बाबा बांधेलियों से कहता है बच्चे मार खाते तो बाबा की याद आते ना, तो वहा बाबा ने क्या कहा था? हाँ, तो बाबा कहे कि अगर मार पड़ती है सहन करना, कितना पॉजिटिव बाबा का दृष्टिकोण था, है ना? तो बाबा ने उस चीज को भी कैसे परिवर्तन करना है कि जो बांधेलियां नहीं है झुटेले हैं, वो इतना याद नहीं करते कितना बांधेली याद करती, और बाबा भी इसीलिए उन बांधेलियों को कितना याद करता है, सूक्ष्म में मदद करता है, शक्ति भरता है, तभी तो सहन हो सकता है, नहीं तो सहन करने की ताकत है क्या किसी की बिना बाबा की शक्ति के? तो कितना बाबा उस अकल्याण के स्वरूप में भी कल्याण बता रहा है मुरली के अंदर, कि वाह बाबा, बाबा कहे वाह बच्चे अगर मार खाते हैं तो भी खुश रहो, मौज में रहो, बाबा की याद तो बढ़ती है, कदम कदम बाबा की याद आती। तो बाहर का स्वरूप कितना भी अकल्याण का क्यों न हो, लेकिन उसमें भी कल्याण को देखना, ये है स्टॉप, और खुशी होने लगती है। तो इसीलिए हर परिस्थिति में भी कल्याण को ढूंढना, ये बाबा ने हमें सिखाया, ताकि हम अपने संकल्पों को बहुत सहजता से स्टॉप लगा सके। तीसरा स्टॉप लगाने का तरीका, विस्तार में आप लोग आपस में सोचना इसके ऊपर, मैं पॉइंट देती हूँ क्योंकि नहीं तो क्लास पूरा नहीं होगा ना। तीसरी बात, जब कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें बाबा के प्यार को महसूस करना। जब कुछ ऐसा माना ऐसी बात आ जाए, ऐसी घटना घट जाए, तो कोसने के बजाय कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो ये कोसने के बजाय उसमें से सीख लेना कि अगर चीज बार बार मेरे साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं गलत हूं, मुझे उसको ठीक करने की जरूरत है। बार बार अगर वो चीज मेरे साथ हो रही है तो इसका मतलब मुझे कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसको रियलाइज करना। और रियलाइज करते हुए जब आप उस परिवर्तन को अपना लेते हैं तो आपका व्यर्थ समाप्त होना स्वाभाविक है। बाबा बार बार इशारा दे रहा है ना? मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे तो उस समय मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम आती थी मुझे, तो बार बार जब मैं करती थी मुझे समझ में नहीं आता था, थ्योरम्स एलजेब्रा के थ्योरम समझ में ही नहीं आता था, तो गलती हो जाती थी मेरी। तो हमारा मैथ्स टीचर जो था तो उसकी मैं फेवरेट स्टूडेंट थी, उसको बहुत अच्छा लगता था कि देखो ये पुरुषार्थ कर रहे, और खास करके आध्यात्मिकता जब जीवन में देखते हैं तो लगता है कि इतनी छोटी आयु में आध्यात्मिक विचार है, तो संस्कार को देखते थे, दूसरे से अलग दिखाई देते थे। तो इसीलिए जब भी वो यूनिट टेस्ट लेते थे हमारी, तो यूनिट टेस्ट में वो जो मुझे नहीं आता था वो जरूर डालते थे, और फिर चक्कर लगाते हुए मेरे पास आके खड़े रहते थे। खड़े रहते थे तो नेचुरल है, मैं कॉन्शियस हो जाती थी तो गलती हो ही जाती थी मेरे से, गलती हो जाती थी ना, उसको बड़ा गुस्सा आता था, फिर गलती कर दी है इसने। तो जब लास्ट में जब पूरा होता था, क्लास बाहर निकलते थे तो सबका वो मार्कशीट ले लेता था, मेरे को कहता बाद में, सबका लेता था। मेरे को गुस्सा आता था, अभी मेरे को फिर बिठाएगा ये, है ना। उसके बाद जब सब जब चले जाते थे तो मुझे बैठा कर कहते फिर गलती किया ना आज। अभी तब तक वो 10 ऐसे ही जो दाखले थे होते थे वो निकाल के रखता था, करो ये करो सब ये करो। और मैं करती जाती थी तो प्रैक्टिस होने लगती थी। इतनी प्रैक्टिस कराई मुझे, इतनी प्रैक्टिस कराई कि जब फाइनल एग्जाम में मैं इतना अच्छे मार्क्स से पास हुई तो उसको इतनी खुशी हुई। और तब उनके चेहरे पर वो खुशी देख करके मुझे महसूस हुआ कि सूक्ष्म में उसका कितना प्यार था कि वो मुझे फेल होते नहीं देख सकता था, इसलिए इतनी प्रैक्टिस कराई। तो जीवन में अगर कोई भी घटना बार बार हमारे साथ होती है, इसका मतलब कि हम कहीं न कहीं उस बात में पास होने में असमर्थ है। तो बाबा बार बार प्रैक्टिस कराता है हमें, है ना, अलग अलग ढंग से वो देता। तो ये बाबा का प्यार है ना, उस प्यार को महसूस करो, उस प्यार को महसूस करो कि बार बार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ताकि बाबा जानता है कि फाइनल एग्जाम में ये फेल नहीं होना चाहिए, ये पास होना ही चाहिए। इससे बहुत, क्योंकि बाबा को तो जानी जाननहार कहते हैं। बाबा कहते मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ कि हर एक के मन में क्या चल रहा है वो मैं बैठ करके जानू, लेकिन बाबा समय को तो अच्छी तरह से जानता है कि आने वाले समय में इस आत्मा के सामने ये बहुत बड़ा पेपर आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फेल हो जाएंगे। तो बाबा का हमारे से इतना प्यार है कि बाबा कोई भी बच्चे को फेल होते हुए देखना नहीं चाहते। तो कोई चीज बार 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 आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे उसमें से सीख लेकर के उसको मास्टर करना है, और मास्टर करके फाइनल एग्जाम के लिए भी मैं इतना अपने आप को तैयार कर लूं कि पास विद ऑनर्स हो जाऊं। ये बाबा की चाहना है, ये बाबा का प्यार है। तो उस प्यार को फील करो। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति बार बार आती है तो आपको अंदर में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन आप समझेंगे वाह बाबा वाह, है ना। बाबा के प्यार को महसूस करते हुए जब अंदर से वाह वाह निकलेगा तो पास होना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो स्टॉप व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय जैसे ही बाबा का प्यार महसूस होगा तो स्टॉप हो जाएगा, होगा कि नहीं। और अंतिम बात स्टॉप करने की, अंतिम बात स्टॉप करने की, बाबा का ये मधुबन के चार धाम की यात्रा करो, बुद्धि से इसकी यात्रा करो, क्योंकि ये चारों धाम स्टॉप करने का ही पॉइंट है। बाबा की एक मुरली याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे जब शक्ति भरनी है तो कहां जाओ, शांति स्तंभ जाओ, है ना, शांति स्तंभ पर चले जाओ। जब बहुत व्यर्थ चलता है तो हिस्ट्री हॉल में चले जाओ, है ना। फिर जब रूरिहान करना है तो झोपड़ी में चले जाओ, और जब मिलन मनाना है बाप समान बनने का तो बाबा के कमरे में चले जाओ। तो बुद्धि से ये चार धाम करो, स्टॉप हो जाएगा। ये चार धाम को बाबा ने चार नाम दिए हैं, याद है किसी को उस मुरली के अंदर, शांति धाम शांति स्तंभ को कौन सा धाम कहा बाबा ने? हा? महाधाम कहा। हिस्ट्री हॉल को कहा कौन सा धाम कहा? हिस्ट्री हॉल को, हिस्ट्री हॉल है समर्थ धाम। बाबा का कमरा है स्नेह धाम और बाबा की झोपड़ी है स्नेह मिलन का धाम। ये चार महाधाम है ना? महाधाम, समर्थ धाम, स्नेह धाम और स्नेह मिलन का धाम। तो ये चारों धाम में चक्कर लगाओ। जब बहुत कोई बात से परेशान हो जाओ तो इस परेशानी में ये चारों धाम में चक्कर लगाना शुरू करो। बुद्धि से सहज ही आप देखेंगे ये चारों धाम में आपको इतना सुकून बाबा अनुभव कराएगा कि स्टॉप लगना आसान हो जाएगा, स्टॉप लगाना सहज हो जाएगा। या तो अगर बहुत व्यर्थ चलता है तो बाबा ने और एक विधि बताई और वो विधि है साकारी आकारी निराकारी, साकारी आकारी निराकारी। इसमें एक्सरसाइज करो। ये एक्सरसाइज जितनी करेंगे साकारी आकारी निराकारी स्थिति में आने जाने की, बार बार उसमें आना जाना शुरू करो, स्टॉप लगना सहज होगा। ठीक है? तो ये पांच तरीके हैं स्टॉप लगाने का। अब स्टॉक क्या जमा करना है? बाबा ने ये भी हम बच्चों को मुरली के अंदर बहुत सहज तरीका बताया कि बच्चे एवर रेडी बनना है तो एवर रेडी किसको कहा जाता है? कई बार बाबा पूछते मुरली में, बच्चे एवर रेडी हो, तैयार हो? बच्चे तो हाथ उठा देंगे, हाँ हम तैयार हैं, क्योंकि ये पतित दुनिया में, दुख की दुनिया में बहुत कष्ट है, कौन नहीं जाना चाहेगा? हम भी चले जाएं, चाहते हैं ना? तो तैयार है ना? बाबा किसी को भी बुलाए तैयार है? तैयार है? तैयार है? जो तैयार है हाथ खड़ा करो। अच्छा, तैयार किसको कहा जाता है? मान लो कि आपको मधुबन आना है, बहन जी क्लास में पूछती है तैयार है? चलो मधुबन चलेंगे। हाँ जरूर चलेंगे। लेकिन अगर टिकट निकालने का भी पैसा न हो, इतना भी जमा न हो आपके पास, तो मधुबन कैसे आएंगे? जमा तो होना चाहिए, टिकट निकाल सके, अपने आना जाने का भाड़ा निकाल सके, इतना तो पैसा हो। चलो यहाँ तो कोई दूसरा भी आपको स्पॉन्सर कर देगा टिकट, है ना? कि चलो चलो मैं दे देता हूँ, बाद में आप मेरे को दे देना जब आपके पास जमा हो। लेकिन ये बेहद की यात्रा में तो स्पॉन्सर होगा नहीं कि कोई दूसरा मेरी टिकट निकाल दे और हम एवर रेडी हो जाएं, है ना? तो तैयार है जब बाबा पूछते हैं, उसका मतलब है कि हमारे तीन जमा के खाते भरपूर है, तीन जमा के खाते भरपूर होने चाहिए। कौन से तीन जमा के खाते भरपूर होने चाहिए? सबसे पहला खाता जो भरपूर होना चाहिए वो है पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा होना चाहिए। ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो जो प्रारब्ध फुल जमा हो। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। राजा घराने में जन्म लेने के दो तरीके बाबा ने जो बताए। दुनिया में तो दान पुण्य करते हैं और अच्छे घर में जन्म लेते हैं, लेकिन हमको जो राजा घराने प्रारब्ध में जो राजा घराने में जाना है उसके भी दो तरीके बाबा ने बताए, दान और पढ़ाई, है ना? दान और पढ़ाई। ज्ञान दान है? ज्ञान दान करते जाओ, जो बाबा से मिला है वो दान करते जाओ। जितना दान करते जाएंगे उतना राजाई घराने में जाना सहज होगा। यानी प्रलब्ध को अगर जितना श्रेष्ठ बनाना है, दास दासी भी प्रलब्ध है, प्रजा भी प्रलब्ध है, राजा रानी भी प्रलब्ध है, शाहूकार प्रजा भी प्रलब्ध है, और महाराजा महारानी भी प्रलब्ध है। लेकिन ये प्रलब्ध जो प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया? तो पहला है दान से, दान से। ज्ञान दान करो, गुण दान करो, शक्तियों का दान करो, है ना? मनसा वाचा कर्मणा दान करते जाओ, उससे हमारा प्रलब्ध श्रेष्ठ बनता जाएगा। दूसरी जो बाबा ने कहा, पढ़ाई, सिंसियरली पढ़ाई पढ़े। सिंसियरली पढ़ाई पढ़ना माना एक एक बाबा के महावाक्य को जीवन की धारणा में ले आना। पढ़ाई पढ़ना माना ये नहीं खाली गए स्कूल पढ़ लिया और पढ़ने बैठे तभी भी बुद्धि बाहर भटक रही है। बैठे यहाँ है, बुद्धि बाहर भटक रही है, वो पढ़ाई नहीं है। मम्मा की विशेषता में आज सुना कि मम्मा जब बाबा के सामने, दादियां जब सुनाती थी मम्मा की बातें, तो हिस्ट्री हॉल में जो दो संदल रखी है, एक पर जब बाबा बैठते थे दूसरे पर मम्मा बैठती थी, और जब बाबा मुरली चलाते थे तो मम्मा एक टक जैसे पूरी मुरली ग्रहण हो जाती थी। बाद में जब बाबा कहते थे कि बच्ची सुनाओ बाबा ने क्या सुनाया, तो आदि से लेकर अंत तक जिसको एक सेंटेंस भी इधर उधर ना हो, ऐसे मम्मा रिपीट करती थी पूरी मुरली। कोई भी बात बाबा की कही हुई छूटी न हो, उसकी एकाग्रता आप सोचो कैसी होगी। ये थी पढ़ाई, इसलिए मम्मा नंबर वन चली गई। तो दान और पढ़ाई से ही हमारा प्रलब्ध श्रेष्ठ बनता है। दूसरा प्रलब्ध को श्रेष्ठ बनाने का तरीका है, ये दो चीज तो है, तीसरी चीज है श्रीमत। श्रीमत अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कितना हम श्रीमत पर हर कदम चलते हैं, ये पुरुषार्थ है। हर कदम श्रीमत पर चलना, यही तो पुरुषार्थ है। और हर कर्म हमारा उस श्रीमत के आधार से हो, ये है पुरुषार्थ। क्योंकि हम चाहते तो हैं कि हमारा हर कर्म श्रीमत के अनुसार हो, लेकिन बीच बीच में अपने संस्कार भी बीच में इंटरफियर करते हैं, पास्ट के जो कहीं न कहीं अवज्ञा करा देते हैं, और सूक्ष्म में ऐसी अवज्ञा हो जाती है जो पता ही नहीं चलता। बाबा की दो दिन पहले की वाणी थी कि माया क्या करती है, श्रीमत को भी महसूस नहीं होने देती है कि ये श्रीमत है या मनमत है। नहीं, ये संडे की मुरली, आने वाले संडे की मुरली जो है बाबा की, बहुत सुंदर है कि माया कभी कभी ऐसे बच्चों की बुद्धि के ऊपर जैसे आवरण डाल देती है, जो होती है माया की मत, लेकिन उसी को श्रीमत समझ लेते हैं। तो बाबा की श्रीमत को तोड़ मरोड़ करना, ये भी कहीं ना कहीं हिसाब बना देता है। तो माया अपना अंतिम दांव तो चलेगी, माया का अंतिम समय चल रहा है तो अंतिम दांव तो चलेगी ना, जितने हाथ लगे उसके, है कि नहीं, जितने हाथ लगे। तो इसीलिए जो है बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट समझते हुए उस अनुसार हमारे हर कर्म हो, ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध जमा करना। श्रेष्ठ पुरुषार्थ यही है ना, हर कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार हो। खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, हर बात के लिए श्रीमत है। कौन से कर्म के लिए श्रीमत नहीं दी है बाबा ने, तो उसको कहते हैं पुरुषार्थ। उसी से श्रेष्ठ प्रारब्ध हमारी जमा होती है, तो ये स्टॉक जमा होता है ना। दूसरा खाता जो जमा करना है वो है सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना। इसीलिए बाबा ने हमें कहा है कि स्व उन्नति और सेवा अंत तक रहेगी। सेवा जितनी हम करते जाते हैं उससे हमारा पुण्य जमा हो रहा है, ये स्टॉक भरपूर हो रहा है। और तीसरा खाता जो जमा करना है वो है किसी भी आत्मा को सुख देते हुए संतुष्ट करते करके दुआओं का खाता जमा करना। ये तीन खाते जमा करने की बात बाबा ने कही, ये स्टॉक भरपूर हो, उसको कहेंगे कि हाँ तैयार है, चलने के लिए तैयार है। अभी अगर हम कह दें कि हाँ हम तैयार है, लेकिन अगर मेरे ये तीन खाते जमा नहीं है, भरपूर नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ से उठाए बाबा, रखे कहाँ हमको, दास दासी में रखे, प्रजा में रखे, और क्या वो स्टेटस जो हमें मिलेगा उससे मैं राजी होंगी, उससे मैं राजी रहूंगी? तो इसलिए ये तीनों खाते हमें कहाँ काम आने हैं, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जो है ये सतयुग त्रेता युग तक चलता है, दो युग तक चलता है ना। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता त्रेता अंत तक हमारी प्रारब्ध, वहां पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए यहां पुरुषार्थ करके वहां तो अकर्म हो जाता है, तो त्रेता अंत तक तो अकर्म ही होगा, इसलिए प्रारब्ध का खाता त्रेता अंत तक का जमा करना है। सोचो 21 जन्म का प्रारब्ध का खाता जमा करना है, तो कितना अटेंशन हमें देना होगा। स्टॉप इसीलिए ताकि लीकेज न हो जाए, नहीं तो लीकेज हो जाता है। फिर उसके बाद है सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता है वो द्वापर से कलयुग तक काम आना है, है ना। सेवा जो किया तो सेवा का पुण्य, क्योंकि द्वापर के बाद हमारा वहां पर जो है एकदम जाते ही हम श्रेष्ठ कर्म करने लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा। बाबा की 19 तारीख की मुरली याद आती है, 19 मई की मुरली, यही पिछले मास की मुरली याद आती है, 19 तारीख की मुरली, कोई ध्यान से अगर पुनः अगर है तो पढ़ ले। 19 तारीख की मुरली में बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म कर्म की गुह्य गति बताई है, और उसमें बाबा ने कहा है, ये लाइन एक ही लाइन है, उसमें बाबा ने कहा है कि जो बच्चे, उसमें बाबा ने धारणा की बात, चोरी, झूठ, ठगी, ब्राह्मण बनने के बाद है ना, छोटी छोटी चोरी करते, झूठ बोलते हैं, छोटा छोटा विक्रम जो बाबा कहते हैं हो जाता है, लेकिन ब्राह्मणों का हिसाब भी बाबा ने बताया है, एक का 100 गुना, है ना। तो है छोटा सा झूठ, चोरी छोटी सी होगी, लेकिन यज्ञ में रह करके या यज्ञ में आकर के यज्ञ की चोरी अगर किया तो एक का 100 गुना जो बना। बाबा ने उस मुरली में बहुत स्पष्ट ये बात कही है, ऐसे छीछी कर्म करने वाले छीछी जन्म को प्राप्त, कई जन्म छीछी प्राप्त करेंगे। बाबा की ये लाइन है, कई जन्म छीछी प्राप्त करेंगे। अब सोचो कि ये ब्राह्मण जन्म है, यहाँ वो छीछी कर्म किया, चोरी करना, झूठ बोलना, ठगी करना, ये किया, लेकिन यहाँ के बाद तो सतयुग है, तो कई जन्म छीछी कैसे मिलेंगे हमें द्वापर के बाद। तो ये कर्म जो संचित रूप में चला जाता है, संचित रूप में, क्योंकि उसका हिसाब बताए, कई जन्म छीछी घर में जन्म होगा, कई जन्म, एक जन्म की बात नहीं किया है बाबा ने, कई जन्म छीछी घर में जन्म होगा। तो द्वापर के बाद जैसे हम कई बार देखते हैं स्लम्स में, छीछी है ना, जहाँ चारों ओर किचड़ा है, वो किचड़े में जन्म लेंगे, छीछी घर में जन्म होगा, जहाँ इतना गंदा वातावरण हो, गंदगी हो, ऐसे वातावरण में, क्योंकि यहाँ वो कर्म संचित कर्म के रूप में आत्मा के अंदर चला गया, वो जैसे फिक्स डिपॉजिट में चला गया, और वो फिक्स डिपॉजिट खुलती है द्वापर में। तो द्वापर में जब खुलती है तो क्या होगा, तो भोगना तो पड़ेगा, इसलिए कई जन्म जो बाबा ने कहा, क्योंकि वो इंटरेस्ट कितना होगा उसका, उस फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कितना होगा, सोचो तो सही। मुरली 19 तारीख की पढ़ना, बहुत सुंदर बाबा की मुरली है। कई जन्म छीछी घर में जन्म होगा, तो ये है, इसीलिए बाबा बार बार कहते बच्चे सेवा करो, तन मन धन समय श्वास शक्ति जिस भी रूप से कर सको, क्योंकि उससे जो पुण्य जमा होगा वो पुण्य ही उस छीछी कर्म को नलीफाई कर सकता है, क्या उसको थोड़ा रिपेयर कर सकता है, खत्म कर सकता है, इसलिए सेवा करते चलो, है ना। चार प्रकार की सेवा बाबा ने बताई है मुरली बाबा की, पिछले साल की मुझे याद आती है अव्यक्त मुरली, चार प्रकार की जो बाबा ने सेवा बताई है, एक है स्वसेवा। स्वसेवा कैसे करनी है, अपनी शुद्धिकरण की सेवा, स्वसेवा। दूसरी है यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा भी क्यों करते हैं, बाबा के घर में आते हैं हम, सेंटरों पर जाते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं। यज्ञ सेवा से दधीची ऋषि के समायन जब हड्डियां दिया है यज्ञ के अंदर, तो ये हड्डियों से जो विकर्म हुए हैं उसको हम क्लियर कर सकते हैं, इसलिए यज्ञ सेवा बहुत जरूरी है। ये नहीं कि ये भावना नहीं, कोई भी कर लेगा ना, जमा किसका होगा, जो करेगा उसका होगा ना। तो ये भावना रखना कि भाई मैं नहीं करूं, ये कोई भी कर लेगा, तो जमा तो उसका हो जाएगा ना। तो सूक्ष्म गति को समझो, तो हड्डियों को पावन, जिन हड्डियों से हमने विकर्म किए हैं दो युग तक, उसको पावन करना है, और पावन करने के लिए यज्ञ सेवा बहुत जरूरी है ना। तीसरी है विश्व सेवा। विश्व सेवा कैसे करनी है, वो भी बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से, कि भाई जैसे बृहद विहंग मार्ग की सेवा, जैसे जो सेवा के प्लान्स विश्व के आत्माओं को जगाने के लिए किया जाता है, प्रदर्शनी होती है, मेले होते हैं, वहाँ रैलीज निकलती है या कैंपेन्स निकल, ये सब विश्व सेवा में आता है। और चौथी है मनसा सेवा, ना? विश्व सेवा के अंदर वाणी से सेवा ज्यादा होती है, लेकिन मनसा सेवा चौथी है। तो स्व सेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा और मनसा सेवा, ये चार सेवा बाबा ने बताई है। उसी से जो हमारे विकर्म हुए हैं दो युग तक के, जो जमा पड़े हैं आत्मा के ऊपर, जो जंक के रूप में बैठ गए, उसको क्लियर करने का ये मात्र साधन है। लेकिन अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी छीछी कर्म किए, आप सोचो, जब झूठ बोलना, चोरी करना, इसको बाबा ने इतना छीछी करके इसकी गति बताई है मुरली के अंदर, साकार मुरली के अंदर, तो जो काम क्रोध लोभ वश कर्म करते हैं उसकी तो क्या सजा हो सकती है, सोचो तो सही, उस गहराई को समझो। ये हमारे जमा के खाते को एकदम खत्म कर देता है। इसीलिए सावधान, तो जमा का खाता भरपूर होना चाहिए हमारा, तो सेवा करते हुए पुण्य का खाता जमा करना, क्योंकि द्वापर से लेकर कलयुग तक उसी खाते पर चलाना है। फिर हाँ, वहां और छोटे छोटे दान पुण्य करके हम अपने आप को चलाएंगे, पुण्य जमा करते जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ का किया हुआ, इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ जो जमा किया ना 84 जन्म तक चलाना है। और दुआओं का खाता कहाँ काम आना है? अंतिम समय, अंतिम समय में काम आना है। बाबा कहते दुख के पहाड़ गिरेंगे, चारों ओर से पेपर आएंगे, अभी तो कुछ नहीं है, चारों ओर से एक साथ पेपर आएंगे। कितने पेपर होंगे सोचो, एक स्वयं से ही पेपर ले लो, अपने ही संस्कारों का पेपर होगा, बीमारियों का पेपर होगा, खुद से ही संस्कारों का, बीमारियों का, टेंशन का, मानसिक, एक शारीरिक, एक मानसिक, चौथा इविल स्पिरिट का अटैक होगा। कितने पेपर, एक स्वयं से ही चार पेपर है, फिर संबंधों का पेपर, लौकिक से, अलौकिक से, जिसको हम जानते पहचानते नहीं वो पेपर लेने आ जाएगा, सोचते क्या मतलब आया है ना, लेकिन कोई जन्म का कनेक्शन तो होगा, हम नहीं जानते, इस जन्म में अनजान है, लेकिन आएगा तो सही पेपर लेने के लिए। तो लौकिक अलौकिक अनजाने लोगों का भी पेपर, संबंधों का भी पेपर होगा, फिर परिस्थितियों का पेपर, चुनौतियों का पेपर, समस्याओं का पेपर, कितने पेपर होंगे, प्रकृति का पेपर। मैं एक बार गिनती कर रही थी, निकाला था लिस्ट, 16 पेपर हरेक को देना होगा, और 16 पेपर एक साथ में अगर आए, 16 पेपर एक साथ में अगर आए तो सोचो क्या हाल होगा। जो बाबा कहते हैं ना दुख के पहाड़ गिरेंगे, उस समय स्थिति को मेंटेन करना, उसके लिए दुआएं चाहिए। दुआएं जिसके पास होगी वो इन सब पेपरों में से मक्खन से बाल की तरह निकल जाएंगे। जैसे जा रहे हैं, साधनों का भी पेपर आए, जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, होता ही है, ब्राह्मणों का एक्सीडेंट नहीं होता है क्या? होता ही है। अब गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अगर दुआओं का खाता होगा तो भले गाड़ी खत्म हो जाए लेकिन आपको एक खरोच तक नहीं आएगी, ये दुआओं की शक्ति ने बचाया। मुझे याद है कि एक बार हम अहमदाबाद जा रहे थे, फ्लाइट पकड़नी थी मुझे, जा रहे थे, अभी रास्ते अच्छे हैं तो 100 की स्पीड तो रहती ही है, हमारे आगे एक ट्रक चल रही थी, अचानक उसका पता नहीं क्या हुआ तो बंद पड़ गई रास्ते में, अब 100 की स्पीड है तो क्या होगा, अंदर जाना ही है। पूरी गाड़ी अंदर चली गई, पूरा इंजन और ये सब तो खत्म हो गया समझो, पूरा ये आगे का विंडशील्ड था, मैं आगे ही बैठी थी तो कांच तोड़ करके जो पीछे का रॉड होता है, आयरन रॉड होता है ट्रक के पीछे जिसके ऊपर वो पैर रख के चढ़ते हैं, वो ट्रक का रॉड जो है कांच तोड़ करके सारा कांच तो ऐसे यहां आके रुक गया। आप सोचो, मैं इतना हैरान हो गई, एक इंच पर आकर के वो रॉड रुक गया। अगर वो एक इंच आगे आ जाता था तो ऑन द स्पॉट डेथ होना था। तब मुझे महसूस हुआ कि दुआओं की शक्ति क्या करती है, दुआओं की शक्ति, वो दुआओं की पावर ने उसको रोका कि लगने नहीं दिया, एक इंच पर आकर उसको रोक दिया, नहीं तो इतने बड़े जोर से एक्सीडेंट हो और वो एक खरोच तक ना आए, एक खरोच तक नहीं, गाड़ी तो पूरी स्क्रैप में गई लेकिन एक खरोच तक नहीं आई, क्या कहेंगे इसको, दुआओं की शक्ति ने बचाया। तो अंतिम समय ये 16 पेपरों का जो आएगा वो आप लोग आपस में चाहे वर्कशॉप करना, 16 पेपर निकालना, एक एक पेपर है, जैसे का साधनों का पेपर, ये मोबाइल का पेपर नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, अंतिम समय मोबाइल याद आए, या अंतिम समय आप कहीं फंसे हुए हो और मोबाइल डिस्चार्ज हो जावे तो पेपर नहीं है ये, तो साधनों द्वारा। मैंने कहा तो मैंने लिस्ट निकाली कहां कहां से पेपर आ सकते हैं और कितनी दुआओं की पावर चाहिए मक्खन से बाल की तरह बाहर निकलने के लिए। इसलिए बाबा कहे, किसी को भी संतुष्ट करो, सुख दो और दुआएं जमा करते जाओ। तभी तो बाबा ने कहा संतुष्टता के भी 3 सर्टिफिकेट लेना है, है ना, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, परिवार मुझसे संतुष्ट और बाबा मुझसे संतुष्ट। ये जितना संतुष्टता का सर्टिफिकेट आपके पास होगा उतनी दुआओं की पावर ज्यादा होगी, दुआओं की पावर ज्यादा होगी। ये स्टॉक जमा करना है दुआओं का, पुण्य का और प्रलब्ध का, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। किसी का मन कर रहा है क्या छुट्टी देने का दीदी को? देखो दीदी क्या करे, हमारा भी मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि दीदी सुनाते रहे हम सुनते रहे। किसी का मन भरा, किसी को नींद भी नहीं आ रही दीदी, मैं सच कहती हूँ ना, मैं तो कहती सचमुच में ऐसा लग रहा है। हमने भक्ति मार्ग में सुना था, गोप गोपियां बस सुनती रहती थी, बस मुरली बजती रहती थी, बिल्कुल वो वाइब्रेशन आज तो ऐसे लग रहा है जैसे सब गोप गोपियां मगन होकर के क्या कर रहे हैं, भगवान की मुरली का रस ले रहे हैं। सब ये फील करें आप सभी गोप गोपियों का, मुझे तो जो वाइब्रेशन जो आ रहे थे वहां बैठे बैठे मैं देख रही थी, सब तल्लीन होकर के, किसी ने घड़ी को नहीं देखा, मन और घड़ी को कह रहे थे कि रुक जाओ। ड्रामा कहेंगे दीदी, हम तो कहेंगे
ओवरडोज तो नहीं
नहीं दीदी,
हैवी डोज था जरा,
अगर हो तो बताइएगा भाई। किसी के चेहरे देख आप देखिएगा एक को भी, और टाइम ऐसा है एक झुटका सब जरूर आता है सबको, लेकिन किसी ने भी इतनी गुह्यता, क्या कहेंगे, शब्द हमारे नहीं है दीदी के इन महावाक्यों को सुनने के लिए। हम चाह रहे हैं कि तृप्त तो नहीं हो पाए दीदी, ये तो गारंटी है। और ऐसे आप सुनाते रहिएगा। अब ड्रामा क्या कहेंगे, ड्रामा की घड़ी को तो रोक नहीं सकते हैं, मौका होगा तो जरूर हम लाभ लेंगे आपका, इतना स्टॉप और स्टॉक, और सबसे बड़ी चीज दुआओं का खाता दीदी ने जमा करने के लिए कहा। 16 कला संपूर्ण वाली दुनिया में जाना है तो 16 पेपर हम सबको अवश्य देना होगा। वो 16 पेपर कब होंगे एक बार जरूर, क्या तो दीदी को आप अपने पास बुलाइए है ना सुलक्षणा में, या तो एक बार और आना पड़ेगा। कौन से 16 पेपर तो हो, पेपर की तैयारी भी तो चाहिए ना, तभी तो हम पास हो पाएंगे। तो बहुत सुंदर। हाँ जी, पेपर की तैयारी, क्वेश्चन पेपर, टीचर जो होता है ना क्वेश्चन के साथ आंसर भी देता है, तभी तो तैयारी कराता है ना। दीदी ने अपना एग्जाम्पल क्यों दिया, क्वेश्चन के साथ क्या होता है उसका आंसर भी अच्छा, टीचर जो होता है दोनों की तैयारी कराता है। तो वंडरफुल क्लास, हम तो इसके लिए कोई शब्द नहीं है, बस दिल से। यही तो दीदी की विशेषता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ ऐसा न्याय करती है, इतनी गुह्यता गहराई। जैसे कहा ना कोयले के खान से हीरा निकालना है, दीदी का जन्म बताया ना, वहाँ हीरे की खान है। अफ्रीका किस लिए माना हुआ है, हीरे की खान ही खान है, उनमें से हीरा निकला हुआ है, इसीलिए हीरे ही इकट्ठे करते रहते हैं। ये अनुभव दीदी ने हम सबके लिए कराया, बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद दीदी जी। और मैं तो कहूंगी संतुष्ट तो नहीं हुए हम तो जरूर मौका जरूर हम देखेंगे कि कौन सी क्लास, या तो देख लो आप नीचे जाएंगे तो लाभ लेना हो तो लाभ ले लो, जो होगा ड्रामा अनुसार। चलिए बहुत बहुत फिर से दिल से एक हाथ की ताली बजा करके दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। It's a